tu carina.
Co chuje ka na?
Bhai kuch to kahiye na. Kaho na kaho.
Kuch to chaho.
Kuch ho kuch na.
Kuch kahiye na. Kuch te aankho. ए सहारा
है कोई गाल करो ना जी।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए, मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज, मगर तन्हा नहीं, मेरे साथ एक और मेज़बान है, शरीक मेरे साथ जी असद।
असद
तो आजकल तो असद का नाम आता है तो यही ख्याल आता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात जरूर हो रही होगी, तो बात वही है। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी क्रिकेट और पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों से है। पाकिस्तान के मारूफ साबिक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम, भारत के साबिक विकेट कीपर और साबिक चीफ सेलेक्टर किरण शंकर मोरे, और एक गैर जानबदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट नोवी कपाटिया। तो इनसे आप लोग भी फेसबुक पर सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर आइए हमारी, असद पता बता दें फेसबुक का अगर।
जी हाँ, www.facebook.com/voaurdu।
तो एक झलक अब सुनते हैं और फिर चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ।
And it's caught and bowled. What a magnificent catch. Absolute blinder by Iqbal Kasim and Pakistan have removed Azharuddin with 123 for 4. Iqbal Kasim has dropped the downfall of Azharuddin, and there he is walking back to the pavilion out to a superb caught and bowled. And we mentioned on the first and the second day this man doesn't drop anything of his own bowling. Watch it again.
तो इकबाल कासिम साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं के एक खेल की झलक थी। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम।
कुछ यादें आपकी ताजा हुई ये झलक सुन के?
जी ये बैंगलोर टेस्ट के हवाले से आपने बात चलाया
जी। तो हमारे साथ बहुत से सुनने वाले भी हैं असद हसन के अलावा जो कि मेजबान है प्रोग्राम के, तो उनसे भी हम साथ साथ बात करेंगे। असद कासिम साहब
जी हाँ, इकबाल कासिम साहब का एक मुख्तसर तारफ, वो किसी तारफ के वैसे मोहताज नहीं है, हमारे लिसनर और खासतौर पे जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि इकबाल कासिम बड़े यूनिक तर्ज के स्पिनर थे। और मैंने वो 87 की जिस मैच से आपने झलक सुनवाई है, मैं उसमें 9th क्लास का तालिब इल्म था, और मैं जिस वालहाना अंदाज में और जिस कहना चाहिए कि सेंसेशनल इस कंडीशन का हिस्सा था वहाँ बैठ के, और मैं उसको देखने या सुनने वालों में शामिल था, इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की यादगार मैच।
अच्छा।
और जो आप यकीनन उनकी पर्सनालिटी के बारे में जब बात करेंगी तो उनसे पूछना भी चाहेंगी कि उनके यादगार लम्हात में, और गालिबन आप खुद भी कहेंगे
मेरे मुंह में सवाल देने की कोशिश ना कीजिए,
यादगार लम्हात आपके
मैं किस लम्हे के बारे में उनसे पूछना चाहूँगी इकबाल कासिम साहब से। अच्छा, अपने सुनने वालों को भी बता दूं कि आप बहुत से लोग आप में बल्कि हजारों की तादाद में मौजूद हैं हमारे साथ, तो प्लीज कुछ लोगों ने इजहार भी किया है हमारे एंगेजमेंट उनकी जो है, कोई किसी ने लाइक्स भेजी हैं, किसी ने आंसू भी भेजे हैं, कहीं हंसी और मुस्कुराहट है, तो इस तरह आप अगर मैसेज नहीं भी कर रहे तो कोई ना कुछ हमें साइन तो भेजिए कि आप हैं हमारे साथ। इकबाल कासिम साहब, मैंने असद को तो चुप करा दिया लेकिन पूछूंगी वही कि कुछ यादगार लम्हा शेयर कीजिए हमारे साथ।
देखें, ये इस टेस्ट मैच के हवाले से ही बात कर लेता हूँ। ये टेस्ट मैच जो था बहुत इम्पोर्टेंट था, सीरीज हमारी ड्रॉ थी और फाइनल टेस्ट मैच था, और इसमें पब्लिक का बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई कोई ना कोई फैसला हो जाए। तो इंडिया की आपको पता है बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हमेशा मशहूर रही है, ये लोग ज्यादा अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, एक लंबी लाइन है, तो इस लिहाज से उनका ये जो विकेट था वो स्पिनर्स के लिए काफी मौजू था, और पाकिस्तान के पास इतने जो भी स्पिनर्स थे, मैं, तौसीफ, अब्दुल कादिर, उनका कोई उस लिहाज से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था जितना नाम इन मनिंदर का या यादव का या दूसरे बोलर्स का था। मगर इस मैच में कुछ ऐसा ही रहा कि दोनों तरफ से बोलर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए, यानी चारों दिन मैच जो था वो कभी सी सॉ की तरह यानी आगे पीछे हो रहा था, कभी वो इंडियन फेवर में जा रहा था, कभी वो पाकिस्तान फेवर में जा रहा था, कभी इंडियन फेवर में, कभी पाकिस्तान में, बहरहाल दोनों तरफ से टीम का जज्बा जो था वो भी देखने के लायक था। फील्डिंग में हमारी तरफ से जो फील्डर्स में सलीम मलिक और जितने भी हमारे दूसरे दोस्त साथी थे, हर एक जो था वो बिल्कुल महज था और वो कोशिश में लगा हुआ था कि
अच्छा, लेकिन इकबाल का सर वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए भी नजर आता था क्योंकि उस वक्त न्यूट्रल अंपायरिंग का कल्चर नहीं था, सो काफी मुश्किल था कुछ चीजों को डाइजेस्ट करना आपकी क्यादत के लिए भी और तमाम प्लेयर्स के लिए भी।
इसमें कोई शक नहीं कि वो उस वक्त न्यूट्रल अंपायर का नहीं था, तो वो जो जो एक एक डर खौफ होता है वो तो दोनों तरफ से, मतलब ज़ाहिर है उनका वो होस्ट थे तो उनके जो अंपायर थे उनको तो कोई इतना इशू नहीं था। हमें हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कि यार ये कोई बाइस है या ये कोई डिसीजन देने में, जैसे गवास्कर का एक कैच था तो वो अंपायर ने डिसअलाउ किया या LBW की कोई अपील ऐसी होगी जो हमें नहीं मिली, तो वो फेयर फैक्टर तो रहता ही है ना। न्यूट्रल के बाहर आने के बाद ये चीजें सब खत्म हो गई हैं। बहरहाल वो ये था कि पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जो जीता था वो यकीनन इंडिया की सरजमीन पर जीतना, वो दोनों दोनों ममालिक का ये खासा है कि जब वो खेलते हैं तो बहुत फाइटिंग के साथ खेलते हैं और बड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, कभी भी वो गिव अप नहीं करते, तो इस लिहाज से दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मगर इन द एंड पाकिस्तान वन द मैच। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान इंडिया में जाके, क्योंकि जीतना एक इमरान खान का एक वो था जरीन खास, तो वो भी उनका पूरा
बड़ा ख्वाब
हमारे लिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता था कभी भी, तो मौका मिल गया तो इंडियन टीम के ऊपर के लिहाज से हमारी स्पिनर्स भी जो थे उन्होंने भी अपना नाम कमाया उस मैच।
अच्छा इकबाल साहब, अक्सर ये होता है कि मैच का जो भी नतीजा सामने आता है तो जो हारने वाली टीम होती है उसमें जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसको भी खासी डांटें पड़ी होती हैं तो क्रिकेट के शायकीन की। आपने 2007 के वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब करने वाली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें आप थे, और उसके बाद
जी 2012 में भी
नहीं जिसमें इन्होंने इस्तीफा दिया था, मैं उसका पूछना चाहती हूँ। तो क्या इस्तीफा देने की क्या वजह थी? मतलब मुझे खुशी है एक उसूल की बात पे अगर दिया गया इस्तीफा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बताएं।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आप तो आप पहली खातून है जिन्होंने ये कहा है कि आपको खुशी है क्योंकि प्रिंसिपल स्टैंड किसी ने लिया, वरना लोग अमूमन मुझे आज तक वही यही मेरे पर लेबल लगा देते हैं कि यार आप रिजाइन कर देते हैं। अरे भाई रिजाइन मैं इसलिए करता हूँ कि आप मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना कि एक टीम मैंने बनाई और वो 14-15 मैचों में से 13 मैच हार गई, मेरा क्या जवाब है?
वैसे बड़े करेक्टर की बात थी वो, इकबाल कासिम साहब बड़ा करेक्टर है और इस वक्त हमें किरण मोरे साहब ने भी ज्वाइन किया और दोनों हमारी आज जो मेहमान शख्सियात हैं उसमें एक कॉमन बात यह है कि किरण मोरे भी अपनी नेशनल टीम के चीफ सेलेक्टर रही हैं। 2006 तक उन्होंने ये जॉब की और इसके अलावा वो, और दोनों में एक और भी बड़ी जो कॉमन चीज है कि दोनों ने तकरीबन 11-12 साल जो है वो अपनी अपनी कौमी टीमों को सर्व किया है। किरण मोरे मारूफ विकेट कीपर हैं, एक दो कंट्रोवर्सीज भी हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ उनकी एसोसिएट हैं, सो और ज्यादा पॉपुलर हैं उस सेंस में।
तो अभी हम जो बात कर रहे थे किरण साहब, हम इकबाल कासिम साहब से पूछ रहे थे कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया था, तो कभी आप के साथ ऐसा हुआ कि आपको देना पड़ा हो इस्तीफा सिलेक्शन कमेटी से? ये बताइए।
मैं तो भाई एक सलाम कहना चाहता हूँ इकबाल भाई को, मेरे बड़े भाई है और बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं।
मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत आदाब।
और हम एक कॉमन लैंग्वेज भी बोलते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं।
अच्छा,
बहुत मजा आता है इकबाल भाई के साथ। तो बिल्कुल आई थिंक ये जो चीजें होती है ना ये हमारे मुल्क में बहुत होती है कि आप रिजाइन कर देते हो, ये होता है, ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी होती चलती रहती है और दबाव बहुत, प्रेशर बहुत होता है हमारे दोनों मुल्क के, पाकिस्तान और इंडिया जब मैचेस खेलती है और जब भी कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो पहले टारगेट सिलेक्टर बन जाता है। क्रिकेट टीम जो खेलती है टीम, तो आई थिंक क्रिकेट टीम खेलती है तो उनको अच्छा क्रिकेट खेलने का होता है, पर मेरे मेरे करियर में कभी नहीं हुआ। 4 साल में सिलेक्टर रहा और मेरे करियर में नहीं हुआ। और इकबाल भाई एक रिस्पेक्टेड आदमी है, जानते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटीग्रिटी उनकी बहुत जबरदस्त है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई थोड़ी सी अच्छी टीम होनी चाहिए। कभी कभी आपके कलीग्स होते हैं आपको कॉपरेट नहीं करते क्योंकि तीन चार जन की जो कमिटी होती है आई थिंक कभी कभी वो कॉपरेट नहीं करते तो आपको फिर मजा नहीं आता है काम करने के लिए। जैसे कि आप कंपनी के सीईओ और आपके जो वर्कर्स है आपके अगेंस्ट में जाते हैं, काम करने को तैयार नहीं तो प्रोडक्शन कैसे मिलेगी? तो कभी कभी नाराज दिखे क्योंकि एक स्टेटस होता है खुद का और एक लेवल होता है, तो भाई इसके आगे आपको जाना नहीं है, आप दूसरे किसी को
अच्छा किरण मोरे साहब, हम यादगार मोमेंट्स शेयर कर चुके हैं इकबाल कासिम साहब से, आपके भी दो यादगार मोमेंट्स हम जानते हैं, आप उन्हीं पे बात कर सकते हैं या कोई और हो तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं। एक तो खैर 92 का वर्ल्ड कप था जिसमें मियादाद आपकी किसी गुफ्तगू से नालां थे और फिर उन्होंने जंपिंग की सिर्फ उस टेंशन को डिजोल्व करने के लिए, और एक जो इंग्लैंड के खिलाफ आपकी कैच ड्रॉप किया आपने ग्राम गुज का, वो बहुत महंगा पड़ा, शायद आपके करियर के लिए भी महंगा पड़ा। और फिर वो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर।
अच्छा असद जो है मेरे ख्याल उनको उनके यादगार लम्हा था, मगर उनसे पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। किरण साहब आप बताइए।
वो ये बताएंगे नहीं, ये तो बाकी वो नहीं बताएंगे।
जावेद जावेद भाई तो बहुत बड़े बेहतरीन दोस्त है, अच्छे दोस्त है और मजा आता है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे पाकिस्तान के लिए।
आप कह क्या रहे थे? आप कह क्या रहे थे?
कहा क्या था?
आपने कहा क्या था जिसकी वजह से उन्हें जंपिंग करना पड़ी?
मैं बिल्कुल मैंने पूछा था मोहतरमा घर पे कैसे है। देखो रेडियो पर मैं बोल नहीं सकता, इंडिया पाकिस्तान में सबको मालूम है क्या माहौल होता है। जब आप बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हो तो वहाँ से शुरू हो जाती है, आपको सारे उधर से सुर मिलते हैं, आप वहाँ से मेहंदी हसन सुनने मिलते हैं, गुलाम अली सुनने मिलते हैं, वहाँ पे लता जी सुनने मिलते हैं, सारे सिंगर्स सुनने मिलते हैं वहाँ से। तो अलग अलग से हमारे जो क्रिकेटिंग लैंग्वेजेस है उसमें काफी कुछ इकबाल भाई बोल कैसे बता सकेंगे आपको, बट ऑन रेडियो वी कैन नॉट टॉक ऑन दैट। बट एक जबरदस्त मुकाबला होता है उसमें जो एक दो अपील हुई थी, मुझे लगा जावेद भाई कॉट बी आउट है डाउन द लेग साइड ऐसा लगा मुझे एक बार, फिर मैंने एक बार रन आउट की अपील कर दी तो मुझे जावेद भाई की हमेशा वो भी रुकते नहीं है कभी, तो उन्होंने बताया भाई हर बार क्यों अपील कर रहा है। हाँ मैंने बोला देखो आप आपके बाप का बैटिंग करने का काम है, मुझे मेरा अपील करने का काम है, मेरे को मेरा हक है अपील करने का, तो मैं अपील कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वही इससे शुरू हो गया था। और उन्होंने एक बार जो ट्रॉक जंप कर दी उसके सामने जावेद भाई तो एकदम कैरेक्टर ऑन फील्ड।
सही। अब एक सवाल है शहनाज अजीज के पास, दोनों मेहमानों से एक ही सवाल है।
नहीं दोनों से नहीं,
और एक बार और एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। जावेद भाई एक उनकी 100 टेस्ट मैच खेल रहे थे लाहौर में।
अच्छा।
हाँ और जबरदस्त विकेट थी और एक दो बार काफी क्लोज थे लाइक बिफोर, तो मुझे बताया उन्होंने देख भैया ये अंपायर मुझे आउट नहीं देने वाले, मेरे 100 के बाद आउट देंगे, तो तू अपना विकेट कीपिंग कर ले। तो मैंने बोला जावेद भाई ठीक है अभी चलो आप आउट नहीं हो गए, तो मैं एक दो गजल सुना देता। उन्होंने एक अच्छी मेहंदी हसन की गजल सुनाई बैटिंग करते करते, और इकबाल भाई जानते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे है जावेद भाई, बोलते बोलते क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने हमको अच्छी एक गजल सुनाई, मजा आया हमको। ऐसे लगे बहुत मजा आता है, यू नो हर बार आर्ग्यूमेंट होते रहते ऑन फील्ड और इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा।
अच्छा आप तो बड़े मजे से बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनमें तो बड़ी कशीदगी है। हाँ, टेंशन रहती है।
मैं बल्कि इससे पहले कि मैं वो कशीदगी की बात करूं बता दूं हमारे तीसरे मेहमान नोवी कपाड़िया साहब भी हमारे साथ हैं नई दिल्ली से। कपाड़िया साहब आदाब, आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी बिल्कुल शुक्रिया।
तो अब तीन हमारे ऐसे मेहमान हैं, दो तो खेलते हैं और तीसरे जो हैं बहुत ही सीनियर मुबसर हैं गैर जानेदार, लेकिन एक चीज मुश्तरक है तीनों में, क्रिकेट के लिए मोहब्बत। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि चाहे 1987 का बेंगलोर टेस्ट हो या कल होने वाला ओवल का फाइनल, एक सख्त आसाबी जंग का मंजर हमें हमेशा नजर आता है, तो ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी है या बुरी? इकबाल कासिम साहब आपसे शुरू करूंगी मैं।
जी बोलिए
जी। कि ये क्रिकेट के लिए जो जंग का समय है जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो
एक ख्याल है, देखिए ये शायकीन की हद तक तो ठीक है, वो जज्बा जोश उनका वलवला वो एंटरटेनमेंट है उनके लिए, वो उसको जज्बे से देखते हैं, वो दोनों तरफ यही होता है कि वो जीते हैं हारे अपने पसंदीदा खिलाड़ी से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रन करना आउट करना, हर टीम चाहती है कि वो टीम जीते, वो तो एक एक, एक खेल की ब्यूटी है। मगर खिलाड़ियों के दरमियान एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ऑफ द फील्ड आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलें, ऑन द फील्ड कॉम्पिटिटिव रहें, कोई बात नहीं कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव होना तो कोई अच्छी चीज है, एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें, बॉलिंग करें।
किरण मोरे साहब इसी सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा, आपके ख्याल में ये आसाबी जंग क्रिकेट को स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है क्योंकि एक जाहिर है एक जोश और वलवला रहता है?
देखो आप लोग इतना इसकी पिक्चर बना देते हैं और उसका ट्रेलर बना देते हैं
मीडिया वाले,
तो लोग को हाँ मीडिया वाले इतना पसंद आता है सामने लोगों को, लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बिल्कुल इंडिया जो दोनों टीम खेलती है दोनों मुल्क के लिए खेलती है जीतने के लिए खेलती है, और इकबाल भाई ने सही बोला एक स्पिरिट टीम स्पिरिट की तरफ से क्रिकेट के स्पिरिट के लिए क्रिकेट खेलनी चाहिए और हार जीत तो होने वाली है किसी की एक टीम की, तो इसमें कई बार कई पत्थर मार देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, कई प्लेयर्स को बहुत परेशानी हो जाती है, तो ये सब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे मैच देखो एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को साइड पे रखो और इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए।
एग्जैक्टली।
तो तीसरे हमारे जो मेहमान है, बल्कि पता नहीं किरण साहब ने हमें तारीफ की है या हम पे तनकीद की है, लेकिन जो नोवी कपाड़िया साहब है वो वही काम करते हैं जो हम लोग करते हैं, तो नोवी कपाड़िया साहब आप बताइए आप क्या कहते हैं इस बारे में?
नहीं हमेशा बहुत शानदार मुकाबला होता है जैसे इकबाल कासिम ने बोला, एक वो एक जनून है जोश है उसमें, लेकिन ये मुकाबला मैं थोड़ा अंतर देखता हूं उसे ये जो होने वाला है ओवल में, क्योंकि दो हफ्ते पहले किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी पाकिस्तान का, चाहे जितना जबरदस्त समर्थक है, कि पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगी। तो ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड फाइनल हो गया है, तो इसका मजा एक दूसरा है। और दबाव भी भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान से फिर खेलेंगे। तो मैच हमेशा मजेदार होता है। मेरा तो ख्याल आता है जो 10 साल पहले T20 का जो पहला फाइनल था दक्षिण अफ्रीका में, वहां भी भारत और पाकिस्तान का फाइनल था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तब भारत दल की कमजोर थी, सचिन द्राविड सारे शानदार खिलाड़ी नहीं गए थे, धोनी साहब तभी कप्तान बने थे। तो ऐसा फाइनल रहे तो बहुत ही मजेदार होगा, जो कोई भी टीम जीते कि अंतिम ओवर अंतिम बॉल में वो मिस आउट हो गए तभी भारत जीते। तो मैच तो जबरदस्त होगा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत सुधार किया है और एक टीम की तरह खेल रही है। और जो वो भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा शिखर धवन को शुरू में तोड़ सके तो बहुत कठिन मैच हो सकता है। और पाकिस्तान
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यही असल में फर्क है। और अब हम फाइनल पे आते हैं,
मजेदार वातावरण
जी। इससे पहले कि आप फाइनल के बारे में कुछ पूछे, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ। मुश्ताक अली बाबा, सरदार मुनीर अख्तर और तौसीफ शौकी। तौसीफ शौकी ने सवाल पूछा था कि उस जमाने में खेल का जो मजा था वो अब आपको आता है या नहीं आता, जब भी वक्त लगे आप मिस कोई भी इसका जवाब हमें जरूर दें। साहिल डार ने भी कश्मीर श्रीनगर से जो सवाल पूछा था उसका आप लोग जवाब दे चुके कि कोई ऐसा वाकया जो आपको बार बार याद आता हो, और भी हम नाम पढ़ते जाएंगे। जी असद, आप क्या पूछना चाहते
हैं? जी अब हम आते हैं जरा ओवल के फाइनल की जानिब। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, ये अपने पैनलिस्ट से हम पूछते हैं। इकबाल कासिम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं और पाकिस्तान की खूबियां पूछूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें भारत की खूबियां बताएं। अगर भारत ये फाइनल जीतती है तो किस कैरेक्टर के ऊपर जीतेगी?
देखिए भाई साहब ने बड़ा अच्छा तस्वीर किया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहला मैच जो था पाकिस्तान जब शिकस्त हो गई तो इंडियन और बाकी हमारे ग्रुप के जो दूसरे जो टीम के थे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, कोई भी इंग्लैंड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कम बैक करेगा, फाइट करेगा और ये अच्छा खेल के ऊपर तक आएंगे। आप देखिए तीनों मैचेस में हमारी बॉलिंग जो है उसने ही रोल प्ले किया, बैटिंग के अभी भी स्टिल दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक 236 रन्स और 200 प्लस। तो मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग ने हमारा जो स्टैंड लिया और जो टीम को ऊपर तक लेके आए फाइनल में वो सारा क्रेडिट बॉलिंग को जाता है। बैटिंग ठीक है, ओकेजनली एक दो प्लेयर ने अच्छा किया, लेकिन इंडियन बैटिंग जो है वो सॉलिड है, वो पावर हाउस है मेरे अपने लिहाज से। 1-5 तक तो इनका इतना सॉलिड बैटिंग है कि ये दुनिया की किसी टीम को भी उसको आउट करना मुश्किल है। तो मगर ये है कि क्रिकेट है, क्रिकेट में यू नेवर नो, अगर अच्छा स्पेल हो जाए, एक आध विकेट ऊपर से गिर जाए, अंडर प्रेशर हो जाए, वही ये वो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में किरण मोरे में से एग्री करेंगे कि हम लोग क्रिकेट लैंग्वेज में बात करते हैं कि यार प्रेशर पड़ जाए तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो दैट इज इफ एंड बट।
तो फिर किरण मोरे साहब से पूछा जाए कि आप पाकिस्तानी टीम के बारे में बताइए।
पाकिस्तानी टीम की क्वालिटीज,
उसकी क्वालिटीज आप बताइए।
हम लड़ाना नहीं चाहते, आप देख लीजिए, हम आपसे मुख्तलिफ टीम।
पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है, अच्छी बॉलिंग है, और उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी सी अभी भी कमी है मुझे लगा। बिल्कुल सदाब है वहां पर, पैटर्न लेक्स में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, और इंडिया पाकिस्तान जो प्लेयर्स है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो बिल्कुल वहां पे जो मिडिल ओवर में जो स्पिनर्स आते हैं ना वहां पे थोड़ा सा, लास्ट मैच में क्या हुआ इंडिया के सामने पहले ही से ही शुरुआत कर दी स्पिन गेंद से, तो वहां पे थोड़े नेगेटिव हो गए। आपके पास जो बेस्ट बॉलर होते हैं फास्ट बॉलर होते हैं, तो आई थिंक आपके फास्ट बॉलर कामयाब बॉलर है तो वो विकेट टेकर बॉलर है, आपका स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है तो आप उससे शुरुआत नहीं कर सकते। और बिल्कुल उनके जो फास्ट बॉलिंग हमेशा पाकिस्तान की अच्छी रही है, बेहतरीन रही है, और उसके सामने आप देखिए तो जो बैटिंग है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बैटिंग जैसे इकबाल भाई ने किया थोड़ी सस्पेक्ट है कि 250 रन करें चेज भी करनी हो तो उनको दिक्कतें आ सकती है। आपने देखा श्रीलंका के सामने इंडिया के सामने जैसे बल्लेबाजी की, बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी रिकवरी की, दो विकेट से मैच जीत गया, दो विकेट पर जाने के बाद भी मैच जीत गए। तो आई थिंक मुझे लगा ओवरऑल जो बैटिंग है वो वीक लेंगे पाकिस्तान की, अदरवाइज इट्स ए गुड स्पिरिटेड टीम। और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये यंग प्लेयर को मौका मिला है, यंग प्लेयर ने कुछ करके दिखाया पाकिस्तान के, क्योंकि पिछले आप देखिए वो कितने पुराने प्लेयर जो थे वो टेस्ट मैच खेलते थे बात अलग थी,
exactly.
पर जो वनडे T20 खेल रहे थे ना तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगा जो सोच सिलेक्टर्स की थोड़ी अलग थी, मुझे लगता है आप आगे के सोच नहीं रहे।
किरण मौर्य साहब, इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। एक तो ये हुआ है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसकी जो इंस्टिंक्ट है जिसके अंदर वो लीथल होती है, विकेट्स लेती है, वो वापस आई है। आसिफ और आमिर और उससे पहले वसीम और बकार के बाद दरमियान में सारा अरसा हमने सईद अजमल पे बहुत ज्यादा इनसार किया है। सो अभी जो ये हसन और आमिर और इवन यहां तक जो हमारे तीसरे बॉलर हैं उनकी जुनेद, उनकी वजह से काफी वो इंस्टिंक्ट वापस आ रही है। मैं कपाड़ी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि भारत बहुत जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में है, उसकी खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर है, अगर किसी वजह से वहां पे अर्ली ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिलता है सो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर को तो वो मैच प्रैक्टिस ही नहीं मिली ज्यादातर मैचेस में, सो ये चीज थोड़ी नेगेटिव हो सकती है या मुश्किल बना सकती है भारत के लिए इस फाइनल को?
बिल्कुल, यही हम बोलने वाले थे, यही एक असली परीक्षा भारत की होगी। देखो इंग्लैंड भी तीन मैच बड़े आसानी से जीते और सब ने बोला इंग्लैंड पसंदीदा टीम है फाइनल जीतने के लिए, लेकिन जहां थोड़ी कठिनाई में पड़े तो इंग्लैंड ऊपर उठ ही नहीं सके। यही भारत को झटका नहीं मिला, जो मैच हारे भी है बैटिंग की वजह नहीं हारे, भारत ने भी 300 से ऊपर बनाए श्रीलंका के साथ। तो जो बैटिंग में थोड़ा मतलब जो रोहित शर्मा शिखर धवन शुरुआत में अच्छा स्टैंड नहीं दे सके और विराट कोहली तो खैर बहुत ही लाजवाब फॉर्म में है, तो फिर तो थोड़ी कठिनाई आ सकती है। और टेंशन ये तो मैंने पूरी उम्मीद है भारत सबके लिए फेवरेट्स है तो टेंशन भारत पे होगा। मुझे 1983 का याद आता है वेस्ट इंडीज और भारत का जो फाइनल था, तब जो वेस्ट इंडीज की लाजवाब टीम थी, जब सब जो दुनिया की ऑल टाइम ग्रेट टीम थी, किसी ने उम्मीद नहीं की, लेकिन मोहिंद्र अमरनाथ और मदन लाल जैसे खिलाड़ियों ने रिचर्ड लॉयड जैसे बैट्समैन को आउट किया। तो जो फाइनल का टेंशन होता है वो अलग है, और प्लस ये इंडिया पाकिस्तान मैच है, ये बिल्कुल
बात सही है,
मिडिल ऑर्डर भारत का टेस्ट नहीं हुआ, यही एक थोड़ी कमजोरी हो सकती है। और भारत भी हार चुके हैं श्रीलंका से, ऐसे नहीं है कि अनबीटन आ रहे हैं। अब हु कीप्स द नर्व, जो अपना नर्व रखेगा ये फाइनल जीत सकता है।
अच्छा, हमारे कुछ फेसबुक पर सुनने वाले नजाकत अली, नजाकत इंतखाब अली, ख्वाजा हारून, तैयब तनवीर, जफर अफजल मलिक, डीप थिंकर, शहजादा कयूम, अब्दुल वासे और फरहान असलम साहिबान ने आप सबको खुश आमदीद कहा है, बहुत खुशी का इजहार किया आपकी आमद पर। और मैं यहाँ ये बता दूं कि आप सबकी तो एक्सपर्ट ओपिनियंस अपनी जगह है, मगर सबसे बड़े जो माहिर हैं वो तो हमारे देखने वाले होते हैं तमाशाई। पता नहीं आप लोगों को कितने मशवरे मिलते थे या नहीं मिलते थे, हमारे पास कुछ मशवरे मौजूद हैं एक मुख्तसरन, तो वो हम ऐसा सुनवा दें।
जी हाँ बिल्कुल, सऊदी झलक।
अच्छा ये लेकिन से पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर आप सुन सकते हैं।
फेसबुक लाइव पे ये प्रोग्राम आप बराह रास्त सुन रहे हैं, साथ साथ इसके आप रेडियो के 972 मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे भी आप ये बराह रास्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं।
वर्दा खलील हमारे साथ हैं फेसबुक पर, और वो आपको जो मैं आपको अब झलक सुनवाने वाली हूँ उसका वीडियो भी दिखा देंगी, तो लीजिए सुनते हैं।
देखिए जी, किसी दबाव के नीचे आगे मैच मत खेले, कोई डर के मैच मत खेलें, बिल्कुल खुला होकर मैच खेलें, इजी खेलें जैसे खेला जाता है। जैसे एक आदमी सामने खड़ा है उसको पता है वो बॉलिंग करा रहा है और हमने बैटिंग करनी है, उसको दे के मारें, कोई दबाव ना हो, कोई डर ना हो, बेशक बेडर होकर बेदबाव होकर मैच खेलें और इंशाल्लाह हम कामयाब हों।
इनको चाहिए कि ये पहले बैटिंग करें, उनको एक टारगेट सेट करें, क्योंकि हमारे बॉलर अच्छे हैं, वो प्रेशर में, फाइनल है, फाइनल का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक मैच है, चाहे एक रन से जीत जाएँ चाहे 100 रन से जीत जाएँ।
मैं कहता हूँ कि कल शादाब को बिठा के हम फहीम अशरफ को ट्राई करें और अटैकिंग क्रिकेट, इसलिए कि इंडिया का आपको पता है बैटिंग लाइन में आप स्ट्रॉन्ग है, आप अगर उन्हें 350 का भी टारगेट दे देंगे तो क्वाइट चेजेबल है। तो आपको अपनी नेचुरल गेम करनी है, अटैकिंग गेम करनी है, जिस तरह आप फखर जमान को खिला के कर रहे हैं उसके बाद अटैक के साथ कर रहे हैं।
तो ये मशवरे आपने अंदाजा किया होगा पाकिस्तान के थे, क्योंकि टोल फ्री नंबर हमारा पाकिस्तान का है।
Exactly.
तो
चूंकि हमारे पास 6 मिनट हैं बाकी इस प्रोग्राम में, तो अपने ये सवाल लेके जाते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। इकबाल कासिम सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए? सरफराज ने खासतौर पर पिछले 3 मैच में पहले मैच के से हटके जो कैप्टनसी की है काफी आउट ऑफ द बॉक्स गए हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, इस मैच में वो किस अप्रोच के साथ जाएंगे और क्या मुमकिन तब्दीलियां हो सकती हैं या होनी चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान के पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो बॉलिंग का ही है, क्योंकि आपने अगर इस इंग्लैंड की विकेटों के ऊपर अगर ऊपर से 2-3 आउट कर दिए, जो कि हो सकते हैं, क्रिकेट के अंदर ना होने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपने जैसे इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग की है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर लाइन एंड डायरेक्शन के साथ बॉलिंग करें जुनेद और ये हसन और ये सब, तो चांस है कि ऊपर से 2-3 आउट हो जाए तो आप इंडिया की बैटिंग को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। मगर ये जहन में रखना चाहिए कि इंडियन की बैटिंग है ना 1 to आठ नौ नंबर तक ये बिल्कुल सॉलिड बैट्समैन है और ये रन चेजेबल है, अनबीटेबल नहीं है, रन चेज कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारे जो बॉलर्स हैं उसमें मैं समझता हूँ शादाब को बड़ा अच्छा खेलेंगे इंडियन, इसलिए उसको तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको जगह बनती है टीम में। उसकी जगह पर आप मोहम्मद आमिर का चांस है वापस आने का, और फहीम अशरफ को जैसे लोगों की राय है मैं भी उनसे मुत्तफिक करता हूँ कि फहीम अशरफ को मौका मिलना चाहिए क्योंकि बैटिंग में आपको डेप्थ होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो जितना थोड़ा बहुत रजिस्ट करने की सलाहियत है वो भी नहीं होगी।
Exactly.
क्योंकि अगर देखिए अगर वो इंडिया को चेस करने पड़े 350 भी ना तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो आराम से चेस कर लेगी। तो आपको उनको इतना टफ टोटल भी देना है प्लस उनके बैट्समैनों को आउट भी करना है, प्रोपोजिशन जो है वो 60-40 का है, तो इस लिहाज से आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना है।
आपने साथ साथ 60-40 भी बता दिया। किरण मोरे साहब आप हमें बताइएगा कि इंडिया की टीम क्या किसी तब्दीली के साथ जा सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने जडेजा के साथ अश्विन को भी खिलाया, तो क्या दोनों स्पिनर्स पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे या वो यादव को वापस लाएंगे एक बात, और अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फंबल करता है तो क्या लोअर ऑर्डर में ये स्ट्रेंथ है कि वो जरा रेजिस्ट करें और लंबा स्कोर करें पाकिस्तान के खिलाफ?
देखिए जो पॉली डिपार्टमेंट है हमारा उसमें बहुत अच्छा बैलेंस है, इवन जो बेवरेज और स्ट्रेंथ है हमारी वो भी बहुत बेहतरीन है, उमेश यादव शामी बाहर बैठे हुए हैं, तो अश्विन की जगह पर मुझे लगता नहीं है कोई चेंजेस आए क्योंकि ये देखो बहुत बेहतरीन वेदर है उधर, थोड़ा ड्राई कंडीशन है काफी, और ओवल की पिच हमेशा थोड़ा सा स्पिन को मदद करती है और ग्राउंड भी काफी बड़ा है वहां पर, तो बिल्कुल वहां पर स्पिनर्स दो स्पिनर्स खेलेंगे और मुझे लगता नहीं उमेश यादव और शामी टीम में खेलेंगे क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन वही कॉम्बिनेशन जाएंगे, क्योंकि जो बैटिंग की जो बारे आपने बात की बैटिंग काफी डेप्थ है हमारी, जैसे जाडेजा है अश्विन है ये दोनों ने भी टेस्ट मैच में शतक बनाए और वनडे क्रिकेट में भी काफी उन्होंने रन बनाए, तो आई थिंक बैटिंग में भी काफी डेप्थ है, पर बिल्कुल पाकिस्तान को बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी, चाहे जल्दी निकाल लेते हैं पहले 10 ओवर में 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो दबाव में इंडियन टीम आ सकती है।
तो हम मेरे ख्याल कपाडिया साहब से एक सवाल पूछ लें, वक्त बहुत कम है, कपाडिया साहब किस टीम के जीतने के कितने फीसद इम्कान आते हैं आपके ख्याल में?
नहीं वो तो है भारत के डेफिनेटली मतलब चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बारिश ना गिरे, पूरे मने 100 ओवर का मैच होए, वो मजेदार मैच होए और किसी तरह मने संघर्ष लड़ाई झगड़ा ना होए, मैंने क्रिकेट का मनोरंजन ले सब। ये बात यही बात जो मैं भी किरण मोरे से समर्थ करता हूँ कि जो शुरू के जो दबाव होता है फाइनल का और भारत की ओपनिंग कभी फेल नहीं हुई, जो ये दफा फाइनल में कुछ हो जाए तो फिर मिडिल ऑर्डर पे दबाव हो सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शानदार है, प्लस दे हैव जो एक स्पिरिट से खेल रहे हैं कि दे हैव नथिंग टू लूज, सरफराज अहमद की कैप्टनसी भी बहुत जैसे धोनी की है इंस्टिंक्टिव कैप्टनसी, आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, तो जो मतलब कोई जो चाल चल पड़ेगा और जो जुआ खेलेंगे दोनों टीम जिसका चाल चल पड़ता है, लेकिन ये है कि एज डेफिनेटली
ओवल में पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा या बॉलिंग करने वाली टीम को?
क्या जी फिर से?
ओवल के अंदर पहले जो टीम बैटिंग करेगी वो फायदे में रह सकती है या बॉलिंग करने वाली टीम?
जो उस समय वेदर कंडीशन है उस पे डिपेंड करेगा कि ओवल का जो जिस समय क्या माने ओवरकास्ट, क्योंकि इंग्लैंड में एक तो मौसम बदलता रहता है, ओवरकास्ट कंडीशन हो गए तो फिर बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। भारत चेस अच्छा करता है, आई थिंक पाकिस्तान विल प्रिफर के पाकिस्तान खुद बैटिंग करे, क्योंकि वो जो फिर उन्हें दो इतवार माने 15 दिन पहले का याद आएगा कि हम चेस करते हुए बहुत जल्दी हारे, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान विल प्रेफर के खेले कुछ अच्छा कोके करे और फिर भारत पे दबाव बने, भारत सेकंड बैटिंग।
बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारा, इकबाल कासिम साहब, किरण शंकर मोरे साहब और नूरी कपाड़िया साहब, असद आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही सामने इजाजत भी दीजिए प्रोग्राम खत्म करने की, गुलरुख हमारी प्रोड्यूसर थी, हम सबकी जानिब से खुदा हाफिज।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر۔